وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے. جس وقت وہ بنا رہے ہیں اس ماحول کو ذہن میں لائیے، ویران جانور بھی آ سکتے ہیں، شیر چیتے بھی آ سکتے ہیں اور چور ڈاکو بھی آ سکتے ہیں، ویران جگہ تھی. ساتھ ہی کہا اللہ تعالیٰ اس کو امن کا خوگر بنانا، ادھر امن ہو. دوسری بات، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دینا. کوئی سوچے صحرا میں آپ گھر بنا رہے ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں، اور آپ پھل مانگ رہے ہیں، اور یہاں ثمرات مانگے. ثمرہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بیسٹ حصہ. یہ جو پھل ہوتا ہے نا، فروٹ، یہ بھی درخت کا سب سے بہترین حصہ ہوتا ہے. بس آپ دیکھیں ایک درخت کے حصے کیا ہیں، ٹہنی ہیں، ہم کھانا پسند کریں گے نہیں کریں گے؟ پتے ہیں، کوئی کھائے گا؟ پھل کھاتے ہیں نا. تو ثمر سے مراد صرف فروٹ نہیں ہے، پیچھے بات ہو گئی. فروٹ کے لیے فواقہ آتا ہے، فاقہتن، اس کی جمع فواقہ، وہ صرف فروٹس کے لیے ہوگا. لیکن ثمر ہر چیز کا ثمر ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں محنت کا ثمر، سچ بولنے کا ثمرہ، صبر کا ثمر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اصل میں ابراہیم علیہ السلام وہ ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے حاصل کردہ فوڈ اور سہولت کی چیزیں مانگ رہے ہیں جو آج آپ کو حرم کے ارد گرد دکھتی ہیں. ہم لوگ جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، ہم مکہ میں جائیں تو ہمیں وہ اچھمبا نہیں ہوتا وہاں جا کے، کیونکہ ماشاءاللہ جو ہم یہاں کھاتے ہیں وہ وہاں بھی مل جاتا ہے. لیکن جب لوگ آتے ہیں نا پسماندہ علاقوں سے، جیسے کوئی دیہات سے یا پاکستان سے یا کوئی ایسے علاقے سے جہاں بہت اعلیٰ درجے کا فوڈ بہت مہنگا ہے یا بہت محدود ملتا ہے، وہ آ کے تو مکہ کے حرم اور کعبہ کی وجہ سٹور دیکھتے رہتے ہیں. اور وہ جب آتے ہیں تو ان کے پاس گروسری کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ میں نے بن داؤد سے خریدا تھا، یہ میں نے توحید سے خریدا تھا، یہ وہاں سے دیکھو یہ جوس ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. لیکن ایک دفعہ انسان حیران ضرور ہوتا ہے جا کے، کہ جب آپ سردیوں میں جائیں اور وہاں آم دکھیں. اب یہاں تو ہمارے لیے پاسیبل ہے، لیکن پاکستان میں سردیوں میں آم نہیں ہوتے. یا گرمیوں میں جائیں اور آپ کو فریش اورنج دکھیں. لیکن کعبہ، مکہ بالکل دنیا کا سینٹر ہے. اگر آپ پورے گلوب کے مڈل میں ایک سوراخ ڈالے نا، ایک نیڈل ڈالے، تو وہ مکہ بنتا ہے. اللہ نے سینٹر کو چنا، اسی لیے یہ مصاب ہے. ہر طرف سے لوگ الٹ الٹ کے، پلٹ پلٹ کے آتے ہیں. تو گویا کہ بہترین چیزیں وہاں پہ پہنچتی ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر کے ساتھ ہی کیا کہا کہ اللہ ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، صرف اس کو دینا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے. یہ کیوں بھائی؟ بہت زیادہ تعصب تھا ان کے دل میں؟ نہیں، ادب دیکھیے کہ پیچھے چونکہ دعا کر لی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ و من ذریتی، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، تو اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گا. یعنی ظالموں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، مراد جو ہے کہ جو ڈیزرو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا. تو اب ابراہیم اتنے محتاط ہو گئے، اتنی جلدی بات ماننے والے تھے کہ فوراً خود ہی کہہ دی ہاں ہاں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، بس اس کو دیجئے گا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے. یہ ادب کا تقاضا ہے، کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، خود ہی اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے محبت کی بات کی، اللہ سے محبت کا ثبوت دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے الرزاق ہونے کی بات کر کے کہا قال ومن كفر فأمتعه قليلا، کہا پس جو کوئی کفر کرے گا میں اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا سا. یہ کون سا فائدہ ہے؟ دنیا کا. کیونکہ دنیا کا تھوڑا بھی زیادہ بھی تھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم آپ نے تو صرف ایمان والوں کے لیے مانگا ہے رزق، میں کافروں کو بھی دوں گا. یہ کیسے دوں گا؟ یہ قلیلاً لفظ کو آپ دو طرح سمجھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو دنیا کا بھی ملے گا تو تھوڑا ہی ملے گا، کیونکہ دنیا ہے ہی تھوڑی. دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ یہ قلیل کب تک ملے گا؟ جب تک محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح نہیں کر لیتے. آپ اگر مکہ کی ہسٹری کو دیکھیں تو اسماعیل سے لے کر اللہ کے نبی کے دور تک یہاں کافر تھے، مشرک تھے. وہ ابراہیم کے پیروکار، لیکن عقائد بہت بگڑ چکے تھے. कोई मान ही नहीं सकता कि कभी ये मुसलमान लोग भी थे, लेकिन वो अपनी नज़रों में मुसलमान थे। जैसे जैसे आज भी कोई मुसलमान घर में पैदा होने वाला कब्रों पे जाए, बुतों को पूजे, बुतों को तो नहीं, मुख्तलिफ शिरके काम करें, और आप उससे पूछें कि आप मुसलमान नहीं हैं या हैं, तो गुस्सा करेगा कि आप कैसे कह सकते हैं मैं मुसलमान नहीं हूँ। यानी कौमों के अकायद बदलते हैं, तो कलीलन से क्या समझ में आता है कि इनको थोड़ी ऐश करने दो, जब तक मेरा आखिरी नबी नहीं आ जाता, जिस वक्त इनके लिए ये हुक्म आ जाएगा कि आज के बाद, इस साल के बाद अब यहाँ कोई ना आए, तो कलीलन उतना सा उठा लें, फिर क्या होगा, अतरुहु इला अज़ाबिन नार, फिर बेबस कर दूंगा, मजबूर कर दूंगा इनको जहन्नुम की तरफ, आग की तरफ। यानी दुनिया में ले, आज भी इनडायरेक्टली नॉन मुस्लिम्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही होगा, जैसे बिल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, या अगर दूसरे मुल्कों से वहाँ कुछ खाना आता है या तिजारत होती है, और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि जब हमारे अपने कवानीन बदलते जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा मुसलमानों से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स के वहाँ भी कंट्रोल होने लगते हैं। लेकिन बहरहाल दोनों ही बातें कि कितने को दिन का इनको फ़ायदा होगा, जो ईमान से महरूम लोग हैं उनको इमामत में तो हमने शामिल नहीं किया, अंदाज़ फ़र्क देखिएगा, पीछे बात थी इमामत की, तो अल्लाह ने फ़ौरन से कह दिया कि आप सोचिएगा भी नहीं कि हम ऐसे लोगों को जिनके अंदर ईमान नहीं उनको ये सब कुछ दें। हाँ, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, लेकिन जहाँ दुनिया के फ़ायदों की बात है तो खा लो जिसने खाना है। इसी का एक खुलासा एक हदीस में भी आता है ना, कि ये दुनिया की चीज़ें अल्लाह की नज़र में इतनी हकीर है कि अल्लाह मोमिन, काफिर, फाजिर, मुनाफिक सबको देता है, लेकिन आखरत के फ़ायदे अल्लाह ने ईमान वालों के लिए रखे हैं। वकान बिल मोमिनीन रहीमा, तो कहा कि इमामत नहीं मिलेगी इनको, हाँ दुनिया के फल खाने जितने खाना चाहें खा लें, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इंजाम इनका आग की तरफ है, क़यामत के दिन धक्के दे दे के आग में डाले जाएंगे। सूरह नजम की आयत है या कमर की आयत है कि इनको जहन्नुम की तरफ धक्के दे के बुलाया जाएगा, क्योंकि जाना नहीं चाहेंगे, तो मुराद ये है कि फिर इनका ठिकाना आग है। वह भी सल मसीर, और कितनी ही बुरी जगह है पलटने की। अल मसीर इसम ज़र्फ़ मकान, कि वो जगह जहाँ किसी को लाया जाए, सारा यसीर उसे स्वाद या रॉ इसका रूट होता है, कि कितनी बुरी जगह है जहाँ इनको ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है और खींचा जा रहा है। फिर आगे फिर एक और मंजर है, वह इस जर्फ़ और इब्राहीम उल कवाइद मिन अल बैत, और जब उठा रहे थे इब्राहीम बुनियादें घर की, यानी आप पहली बुनियादें ढूंढी, उसका भी एक अजीब दिलचस्प किस्सा है कि कैसे वो मिली थी उनको, लेकिन बुनियादें वही थी जिस पे शुरू से खाना काबा बना हुआ था, लेकिन ऊपर की इमारत नहीं समझ आ रही थी, बिल आखिर अल्लाह ताला ने वो जगह बताई, तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हीं बुनियादों पे दीवारें खड़ी करने लगे। ये जो लफ्ज़ है ना अलकवायद, काफ आइन दाल इसका रूट है, कायदा की जमा है, ये जो आप बच्चों को कायदा पढ़ाते हैं ना, वो भी यही लफ्ज़ है, वो क्या आती है, बुनियाद, वो टेढ़ी हो गई तो सारा कुरान गलत हो जाएगा ना। तो कहा कि जब हज़रत इब्राहीम घर की बुनियादें बना रहे थे, वह इस्माइल, यहाँ भी वही अंदाज़ है, बना इब्राहीम रहे थे, हेल्पर इस्माइल थे, यहाँ ये नहीं कहा, शुरू में अगर आप अरबी को थोड़ा सा देखें, ये नहीं कहा कि वाइज जरफानी इब्राहीमा, या दोनों का लफ्ज़ इकट्ठा नहीं आया, पहले इब्राहीम की बात के करके का वह इस्माइल, और इस्माइल भी थे, साथ ही बात क्या थी, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब कबूल कर ले हमसे। अल्लाह अकबर, रब्बना का जो लफ्ज़ है ना, ये असल में या रब्बी था, या हट गया, महजूफ है, तो रब्बना हो गया, ये ख़ास नाम है जिसके साथ नबियों ने दुआएं मांगी। अल्लाह ताला के और भी बहुत सारे नाम हैं, और सबसे ही मांग सकते हैं हम सबके ज़रिए से, रहमान, रहीम, लेकिन रब के लफ्ज़ में वो दर्जा है कि जो वाकई बंदे को माँ वाली मोहब्बत याद दिलाता है। रब क्या है, रब कौन सी ज़ात है, ज़र्रे को कमाल तक पहुँचाने वाली, एक छोटी सी चीज़ को बढ़ाने वाली, तो मोहब्बत की बात है, इतनी बड़ी सआदत नसीब हो गई, लेकिन कोई फ़ख्र नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई रोब नहीं, कोई अपने नाम की वहाँ तख्ती नहीं लगा दी। कभी आप जाएं हरम में और वहाँ ढूंढिएगा बैतुल्ला खाना काबा के चारों तरफ कहीं कोने में लिखा हुआ मेड बाय इब्राहिम और इस्माइल, इसलिए कि जो काम करने वाले होते हैं ना, वो अपने नाम की तख्तियां नहीं लगवाते, उनको गम एक ही है कि तकब्बल मिलना, इसलिए कि असल चीज़ काबिलियत नहीं है, कबूलियत है। आप कितने भी काबिल हो जाएं और दूसरा फरीक आपको कबूल ही ना करे, तो आप सोचिए कि आपकी काबिलियत किस काम की। एक लड़की है, वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो जाए, अगर उसका शौहर उससे बात ना करे, उससे उसका दिल ना खुश हो, तो उसकी काबिलियत बेकार है। असल बात क्या है कि आपको कोई कबूल कितना करता है। जब कोई नेकी की जाए तो ये सोच के कि बड़ी बड़ी नेकियां कर रहे हैं, ये सोचिए कि अल्लाह के यहाँ कबूल हो रही हैं कि नहीं। इसी से फिर सारी मनमानी किस्म की नेकियां निकल जाएंगी, इसलिए कि उसने तो कहा ही नहीं ये करो और हम वो करने लग गए। और कबूलियत के लफ्ज़ में एक छोटी सी बात भी छुपी होती है कि अल्लाह इसको कबूल करके इसके बदले में मुझे भी कुछ दे। ये जो हम लफ्ज़ बोलते हैं ना कि अच्छा अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल कर ले, हमारी दुआओं को कबूल कर ले, तो ये कबूलियत कोई ऐसी कबूलियत नहीं होती कि हम इसको कह दें कि बस हमने दे दिया। मिसाल देती हूँ कि मैं आपसे कहूँ, मिसाल दूंगी ज़ाहिर है बात समझने के लिए, मैं आयशा से कहती हूँ कि आयशा आप ये कलम कबूल कर लें, ये आप ले लें। इसमें कई लफ्ज़ हो सकते हैं, अता करना, देना, लेना, लेकिन जब मैं कहूँ ना कि आप इसको प्लीज़ कबूल कर लें, तो उस कबूलियत में अंदर एक चीज़ जज्बा छुपा होता है, और वो क्या कि अब इसके बदले में आप भी मुझे कुछ दें। समझिएगा, मैं आपको भी इसकी थोड़ी सी मिसाल देती हूँ। अब वो देने की सूरत में ज़रूरी नहीं कि मुझे ये कोई कलम ही दें या मुझे पैसे ही दें, बल्कि क्या होगा कि हो सकता है इसकी कबूलियत कि इस कलम से ये बहुत अच्छी चीज़ें लिखें। अब आप देखिए, मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हम कहते हैं कि आप ये रिश्ता कबूल कर लें। जब आप किसी के सामने कोई रिश्ता डालते हैं तो आप कहते हैं इसको कबूल कर ले, तो क्या मतलब है ले के चले जाए? मतलब यह है कि इसको कबूल करें। अब इसको आप और हमारा ताल्लुक बढ़ेगा, हम और एक दूसरे से मिलेंगे, तो कबूलियत में बाद में भी कुछ लिया जाता है। और अगर किसी को कहा जाए ये ले जाओ, उसके बाद सारी ज़िंदगी को शक्ल ना दिखाएं। अब आप लड़की दे दें, उसके बाद अगले के आप कौन होते हैं, जाएं जी हमें मिल गई, आपके नहीं, आपने कबूल की थी, और कबूलियत में जवाब में कुछ ना कुछ लेना होता है। तो कह रहे रब बना तकब्बल मिन्ना। इब्राहिम को क्या चाहिए था रब से इसके बदले में? इब्राहिम को चाहिए था इसके बदले में अपने रब की रज़ा, इसलिए कि जो अल्लाह के लिए काम करते हैं वो उसके बदले में दुनिया में कुछ नहीं चाहते। ये अलग बात है कि अल्लाह उनको दुनिया में देना शुरू कर दे, वो तो कह रहे अल्लाह बस तू कबूल कर ले, अगर तेरी नज़रों में रच गया, तेरी नज़रों में इस काम को कबूलियत मिल गई, तो बस फिर इसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये खिदमत कबूल कर ले, इस मेहनत और मुशक्क़त को कबूल कर ले, ये जो तेरे लिए इतनी दूर आके बैठे हैं, कहाँ मुल्क शाम, सरसब्ज़ो शादाब, अल्लाह ताला ने उसको बड़ी बरकत वाली जगह कहा, सरसब्ज़ थी, उसको छोड़ के एक वीराने में आके बैठ गए हैं, अल्लाह बस तो इसको कबूल कर ले, हमें तो ये चाहिए। इन्नका अंतस्समीउल अलीम, बेशक तू खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। ए अल्लाह, तू सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। क्या सुन रहा है? हमारी इन दुआओं को सुन रहा है। और क्या जानता है? वो जानता है जो हमारे दिलों में मचल रहा है। तुझे पता है कि हम क्या चाहते हैं, हम इस घर को क्यों बना रहे हैं, हम इस वीराने में तेरा घर क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह ये जगह आबाद हो जाए। रब्बना वजालना मुस्लिमैनि लक, अल्लाह ऐसा ही ना हो कि सिर्फ ये घर बना के हम चले जाएं, बल्कि अल्लाह हमें अपना मती भी रखना, यानी इस घर को आबाद रखने वाला भी रखना। ये नहीं कि नेकी का इतना बड़ा तमगा तुम्हारे नाम पे लग जाए, लेकिन हमारे अंदर तेरी इताअत ना हो। मुस्लिमैन, दो मुस्लिम, बाप और बेटा। ज़रा तड़प महसूस कीजिए इब्राहिम की दुआओं की, कितनी समझ है। पहले घर बना रहे हैं, फिर कबूलियत की बात कर रहे हैं, फिर कहा कि सिर्फ ये ना सोचो कि बस घर बन गया तो अब ख़त्म हो गई बात, कहा नहीं इसके बाद भी हमें मुसलमान रखना, इसलिए कि बाज़ नेकियां इंसान को फिर नेकियों से दूर भी रख लेती हैं। इंसान ये सोचने लग जाता है कि बस अब तो बहुत अच्छे काम कर लिए, वो इतना कुछ करके कह रहे हैं कि अल्लाह अपना मती बना ले। हम ज़रा सोचें कि हम कैसे फ़ख्र कर सकते हैं कि कोई नेकी कर ली है तो बस अब पूरी हो गई। नहीं, اس لیے کہ بندہ مومن کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میری نیکی چھن نہ جائے، میرے کیے کرائے پہ پانی نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ اس کے بعد اور نیکیوں کی بھی توفیق دینا، اور صرف مجھے ہی نہیں اور اسماعیل کو نہیں بلکہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولادوں کو بھی۔ پیچھے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری اولاد، تب اکیلے تھے نا، اب ساتھ بیٹا کام کر رہا تھا تو کہا کہ اللہ ہماری اولادیں، یعنی میری بھی اولادیں اور میرے اسماعیل کی اولادوں کو بھی فرما بردار رکھنا، امتم مسلمت لک، ایک امت اٹھانا اس میں سے جو مسلمان ہو، جو فرما بردار ہو تیرے لیے۔ اے اللہ یہاں سے وہ امتیں اٹھا، وہ نسلیں اٹھا کہ جو تیرے آگے متی ہوں، تیری فرما بردار ہوں، وہ نفس کی غلامیاں کرنے والیاں نہ ہوں، وہ شیطان کی باتیں ماننے والیاں نہ ہوں بلکہ تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں۔ وارینا مناسکنا، گھر تو بنا دیا، اب اس میں کام کرنے کا طریقہ بھی سکھا۔ منسک کی جمع، طریقہ عبادت کو کہتے ہیں، خاص طور پہ حج کے مناسک کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ نسک کہتے ہیں قربانی کو، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، کلین اپ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی بھی بندے کو پاک کر دیتی ہے گناہوں سے۔ دیکھیے کتنا پیارا طریقہ کار ہے، گھر بن گیا، عمارت تیار ہے، اخلاص کے ساتھ اینٹیں لگ رہی ہیں، دوسروں سے کروانے کے بجائے خود کر رہے ہیں، چندے مانگنے کی بجائے اس پہ اپنی جان اور اپنا مال بھی لگا رہے ہوں گے اگر کچھ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اولادوں کو بھی لگا لیا، اولاد کے ساتھ ہی ساتھ کہا اب ہمیں اس کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق دینا۔ یہ نہ ہو کہ مسجد تو بنوا دیں اور کبھی وہاں جا کے نماز پڑھنا نصیب ہی نہ ہو، یہ کر کے بھی نہیں خاموش، کہا اب طریقہ بھی تو بتا۔ وارینا منا سکنا، سکھا، آرینا کا لفظ راہ سے ہے، دکھا۔ حالانکہ آپ دیکھیے طریقے دیکھے نہیں جاتے، سیکھے جاتے ہیں۔ ارینا کیوں کہا؟ ایک ہوتا ہے سکھانا، لکھی ہوئی چیز دے دی، ایک ہوتا ہے ڈاکیومنٹری بنا کے دکھانا۔ آج کے دور نے اس کو ثابت کر دیا، آڈیو ویژول ایڈز جو تعلیم کے دوران ہوتی ہے، مشاہدے کی بات ہے کہ زبانی جو بات کی جاتی ہے نا اس کو سن کے اتنا یاد نہیں انسان رکھ سکتا جتنا کام کو کرتے ہوئے دیکھ کے رکھا جائے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں آپ کو اگلی آیتوں کے ساتھ حج کا پورا طریقہ بتا دوں زبانی، جو جا چکے ہیں وہ تو الحمدللہ سمجھ جائیں گے، باقی کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں۔ اور اگر اس کی بجائے آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھا دی جائے کہ حج کے طریقے اور یہ گھر ہے، یہ ابراہیم نے بنایا، یہ اسماعیل نے بنایا، تو وہ نقش ہو جائے گا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں آرینا، دکھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا ان کو، اللہ نے اس دور میں بھی یہ ڈاکیومنٹریز کروا کے دکھا دی، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا اور ہمیں معاف بھی کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ یہ کیا بات ہے، کوئی گناہ کا کام کیا؟ اتنی بڑی نیکی، میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی رشک کر سکے تو وہ ابراہیم پہ کرے، اور اگر وہ لا حسد الا فی اثنتین والی بات کہ کوئی حسد نہیں جائز سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اپنا مال دن رات اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ نے علم اور حکمت دی اور وہ اس کو لوگوں میں لگا رہا ہے، اس کی دلیل پہ آپ دیکھیں تو رش کیا جا سکتا ہے ابراہیم پہ۔ کتنے لوگ آتے ہیں اس جگہ پہ، خانہ کعبہ آباد رہتا ہے حج اور عمرہ کرنے والوں سے، ایک ایک بندے کے قدم جو وہاں پڑتے ہیں، یہ کس کے نام پہ صدقہ جاریہ جا رہا ہے؟ یہ ابراہیم اور اسماعیل کو اجر مل رہا ہے۔ یاد رکھیے جب کام کرنے والوں کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے نا، تو اللہ اس نیکی کو نہ صرف یہ کہ قبول کرتا ہے بلکہ اس کا اثر نسل در نسل رکھتا ہے۔ ایک وہ بھی بندہ ہے کہ جس نے اپنی محنت سے گھر بنا دیا، پتھر ڈھوئے ہوں گے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، اور اللہ نے اس کو اتنی برکت دی کہ قیامت کے دن حیران رہ جائیں گے اپنے صدقہ جاریہ کو دیکھ کر۔ ہر سال آپ کو ہوتا ہے لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، ابراہیم تو کبھی مانیں گے ہی نہیں کہ اللہ یہ وہی ویرانہ ہے۔ اس وقت ذرا ابراہیم کے دل کو ٹٹول کے دیکھیے، اگر دنیا میں کسی لمحے کے لیے ان کو بھیجا جائے جو ناممکن ہے، قیامت سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا، لیکن بالفرض محال اگر کوئی آ جائے اور آ کے ایک جھلک دیکھ جائیں خانہ کعبہ کی، تو میرا حال ہے کہ धाड़े मार मार के रोने लगे कि अल्लाह तूने इतना कबूल किया, तू इतना कबूल करने वाला है, हमने तो एक कमरा बनाया था, तूने इसको इतना बढ़ा दिया। इन्नका अंता तवाबुर रहीम, बेशक तू बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। असल बात ये होती है कि काम करते हुए इंसान के अंदर इखलास हो, जब इखलास हो और तरीके अल्लाह से पूछे गए हों और अपने गुनाहों की माफ़ी का गम लगा हो ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको पता नहीं कितना बढ़ा दे। आज इब्राहिम नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हो ना हो वो काम मौजूद है। एक वो वक्त है कि कुछ लोग लगाते भी हैं और मस्जिदें वीरान हैं। मुझे इतना रहम आता है उन लोगों पे, किसी पे कोई शक नहीं करना चाहिए कि उसका लगाया हुआ ठीक नहीं था या उसका गलत था, लेकिन किस्मत की बातें हैं ना कि लोग मस्जिदें बनाते भी हैं और वो खाली पड़ी रहती हैं। कहाँ गए वहाँ चंदे देने वाले और वहाँ लगाने वाले पैसे? और एक इब्राहिम की जाती के जो इतना करके गए कि अल्लाह ताला ने इतनी नस्लों के बाद वहाँ बरकत रखी, असल इखलास की बदौलत है। अल्लाह नहीं कबूल करता मगर तैयब। रिवायत में आते इन अल्लाह तैयबन ला युकबालु इल्लत तैयब। अल्लाह ताला पाक है और वो नहीं कबूल करता सिवाय पाक चीज़ों के। जज्बे भी पाक होने चाहिए, कमाई भी पाक हो, इरादे भी पाक हों, अल्लाह के दीन को बुलंद करना मकसूद हो, अपने नामों की बात नहीं है। और तरीका भी अल्लाह से पूछा। आज अगर हम जगह बना भी लेते हैं, कितने लोग हैं फिर उस पर इतना ही इख्तमाम करें कि वहाँ जो काम होगा वो अल्लाह की और रसूल की रहनुमाई का हो, और करके भी डरे, कोई फ़ख्र नहीं कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। आज तो हम फ़ख्र करते हैं, ये हमने किया है जी, आपको क्या पता ये काम हमने किया है। तो अल्लाह कबूल करे, अल्लाह मुबारक करे आपको। लेकिन इब्राहिम और इस्माइल ने कोई भी एहसान नहीं जतलाया। अब घर बन चुका है, अपनी हिदायत की दुआएं मांग चुके हैं, वहाँ इबादत के तरीके मान चुके हैं, और अब किसकी कमी रह गई? सोचिए ज़रा। अल्लाह के नाम पे घर बनता है, घर मौजूद है, तरीका भी पूछ लिया, अब करना क्या है? आगे आप पढ़ेंगे इसकी, मैं आपको कोट कराऊंगी इंशाअल्लाह ताला, कि लोगों के दिल इसकी तरफ ले आ। हम वर्जुक अहलहू, और सूरत हज में भी हम पढ़ेंगे जाके कि अल्लाह ताला युजबा इलाही, लोगों के दिल इतने इसमें आ जाएं, मसाबतन में लोग भी मांग चुके हैं। जी आप बताइए फजे। उस्ताद मांग रहे हैं इसलिए कि जगह है, कमरा भी है, तरीका भी है, पढ़ाने वाला कोई नहीं। इसलिए कहते हैं रब्बना वब असफीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे रब, अब एक रसूल को भेज दे, इन्हीं में से हो। मुराद क्या है कि इनकी ज़ुबान समझता हो, ये उसकी ज़ुबान समझें, कोई बैरियर ना हो, कोई रुकावट ना हो। क्या करे, अब क्यूरिकुलम दे रहे हैं। रसूल मांग लिया जो एक मुअल्लिम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुअल्लिम थे। दुआ मांग ली कि अब अल्लाह ताला यहाँ अच्छा सा रसूल भेज दे जो लोगों को तालीम दे। क्या देगा? चार नुकाती एजेंडा। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात किसने सिखाई? अरिना मनासिकना। दुआएं मांग के जब काम शुरू किया जाता है तो अल्लाह ताला खुद ही बता देता है कि वहाँ क्या काम होगा। तरीक़े तालीम बता दिया कि जो उस्ताद आएगा कि अपनी मर्ज़ी से काम करे, जो दिल चाहे करे, लोगों को बस खुशखबरियाँ ही सुनाता रहे, लोगों को बैठ के तावीज़ खोल खोल के देता रहे कि आते जाओ और लेते जाओ, ये करे, बस लोगों को फजीलतें सुनाता जाए जन्नत की और उनको मोहल्लात की खबरें देता जाए। नहीं, अल्लाह ताला रसूल भेज, इन्हीं में से हो, यानी इनको समझे, इनके माहौल को जानता हो, और करे क्या? यतलु अलैहिम आयातिक, पहला मरहला, जो इन पे तेरी आयतों को पढ़े। मुराद क्या है कि इनको तेरा कलाम पढ़ना सिखाए। ये है वो चीज़ जो नसाब में तजवीद और कुरान पाक को सही तरीके से अदा करने के नाम पे शामिल होती है। आज कोई क्यों नसाब बनाए? लोग तो इसी पे इतनी देर कर देते हैं, अभी हमारा नसाब ही नहीं बना, अभी हमने डिसाइड ही नहीं किया हमने क्या पढ़ाना है। नसाब तो बना बनाया है। हम क्या आपको बताएंगे, नसाब तो 1400 साल पहले से राइज हो चुका, और आज से कितने सौ साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो वो नसाब मुंतखब कर दिया कि इनको कुरान पाक की आयतें सिखाएगा। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, ये दूसरी चीज़ है, तालीमे किताब। सिर्फ लफ्ज़ पढ़ने नहीं सिखाए, मखारिज और इनके रूल्स ठीक ना कराए बल्कि तालीम भी दे। और युअल्लिम अल्लमा युअल्लिमु तालीम, ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाना। बाब तफ़ील होता है जिसमें ग्रेजुअलिटी होती है, थोड़ी थोड़ी रिम जिम थोड़ी थोड़ी बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश जो अंदर तक चली जाती है। कहा कि अल्लाह वो इनको तालीम भी देगा। पता क्या चला कि हत्ता के सहाबे कराम जो अल्लाह के नबी के दौर में मौजूद थे उनको भी तालीमे किताब की ज़रूरत थी। आज वो लोग जो अरब घरों में पैदा हुए जिनकी मदर लैंग्वेज अरबिक है उनको भी इस किताब की तालीम की ज़रूरत है। इसमें फिर आ जाती है तफसीर, लफ्जी माना, उसकी वजाहतें, ताकि आप इसमें से सही तरीके से समझ सकें। और तीसरी चीज़ वल हिक्मा, और इनको हिकमत सिखाए। हिकमत से यहाँ दो चीज़ें मुराद हैं। एक तो हिकमत से मुराद है कि वो तफसीर जो अल्लाह ताला के नबी ने कुरान पाक की, यानी ये ना कि मन माने मानी पहना दे किताब की आयतों को, बल्कि हदीस के साथ साथ रहे। कुरान की वो तफसीर जो हकीकत में सलफ़ और असलाफ ने की, और अल-हिक्मा के लफ्ज़ को अलग रखें। तो इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान पाक में जहाँ भी अल-किताब के बाद अल-हिक्मा आया है तो इससे मुराद सुन्नत है, यानी वल हिकमत से मुराद हदीस है। हदीस का इल्म दे लोगों को, अल्लाह के नबी की हदीसें सिखाए, कभी वो तहारत के मसाइल की सूरत में, और कभी वो अकीदे की बातें, और कभी नमाज के मसाइल, लेकिन लोगों को असल टेक्स्ट पढ़ाए जो अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकला। बस इतना ही काफ़ी है, हो गए ये सारे मज़मून का नहीं। वयुज़क्कीहिम, आखिरी काम क्या है कि इनका तज़किया करें, इनको पाक करें, इनके दिलों से दुनिया की मोहब्बतों को खुरच के आखरत की मोहब्बत डाल दें, इनको प्योरीफाई कर दें, इनके अकायद का तज़किया करें, सारे गैर अल्लाह निकल जाएं वहाँ से, इनके अखलाक का तज़किया करें, झूठ गीबत बदगुमानियाँ सारी निकल जाएं, इनके चलने फिरने उठने बैठने का तज़किया करें कि ये ज़ाहरी तौर पे भी खूबसूरत इंसान बन जाएं, ये चलते फिरते कुरान बन जाएं, इनके अंदर तहम्मुल आ जाए, इनके अंदर आजजी आ जाए, इनको हंसने का, इनको बोलने का, इनको चलने का तरीका सिखाए कि इनके दिलों को इतना पाक कर दे कि इस दुनिया से ज़्यादा इनको उस दुनिया की फ़िक्र लग जाए। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला। सारी दुआएं मांग के कहा, बस मेरा काम था दुआएं मांगना, असल गलबा तेरे हाथ में, और तू इनमें से वही करेगा, और कब करेगा, जब तेरी हिकमत के मुताबिक ठीक होगा। ये दुआ कब मांगी जा रही है, काबा की तामीर के वक्त, कबूल हुई कि ना हुई, कब हुई, 4000 साल के बाद। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए। आज हम कहते हैं इधर से दुआ करें और उधर पूरी हो जाए, किसी मुफस्सिर की एक कमेंट है कि दुआ खलील ने भी मांगी थी कि अल्लाह नबी को भेज और वो 4000 साल के बाद पूरी हुई, और दुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी मांगी कि अल्लाह इस्लाम को उमर बिन ख़त्ताब या अमर बिन ख़श्शाम से तकवीत दे दे, और सुबह दुआ मांगी और शाम को कबूल हो गई। अल्लाह जब जिसकी कबूल करे, इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपनी माँ का ख्वाब और ईसा की बशारत और इब्राहिम की दुआ हूँ। कैसे, माँ का ख्वाब कैसे, रिवायात में आता है कि जब बीबी आमना हमल से थी तो इन्होंने ख्वाब देखा था कि इनके जिस्म से एक रोशनी फूटी है कि जो मुल्क शाम की तरफ गई है, यानी उससे दुनिया में रोशनी हो गई। और ईसा की बिशारत कैसे पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह? गालिबन सूरह सफ़ में आता है, कुरान पाक में आयतें आएंगी कि इंजील में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी दी गई थी। हज़रत ईसा ने खुशखबरी दी कि मेरे बाद एक नबी आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। और इब्राहिम की दुआ कैसे है? ये दुआएं हैं इब्राहिम की, दुआए खलील, यदे बैजा, एक शेर भी है कुछ इस किस्म का। तो यहाँ पे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो पहला हिस्सा पूरा होता है कि जिसमें उन्होंने दुआएं मांगी और अल्लाह ताला से एक गहरा ताल्लुक़ रखा। अल्लाह ने उनको इमामत के लिए चुना, उन्होंने औलाद के लिए दुआ मांग ली, अल्लाह ने कहा जालिमों को नहीं मिलेगा। इमामत की अमली सूरत क्या हुई कि घर बनाइए, शुरू कीजिए बुनियादों से काम। लीडर का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ रोप डाले। किसी कौम का सैयद जो होता है वो उनका खादिम होता है, वो फिर गंदगी भी उठा देता है जब ज़रूरत पड़ती है। फिर बेटे को साथ लगाया, घर बना रहे हैं और बनाते बनाते दुआएं मांग रहे हैं। हम ज़रा सोचें अपने आप को, हम कोई नेकी का काम करें और जब करते हैं तो उस वक्त हमारा क्या मामला होता है, क्या साथ साथ दुआएं होती हैं और क्या कबूलियत का फ़िक्र होता है कि बस काबिलियत ही बढ़ाते जाते हैं, कबूलियत का फ़िक्र है। फिर औलाद के लिए दुनिया में ही दुआएं मांग रहे हैं। आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी इम्तिहान थी, अल्लाह ताला ने उनको कैसे इस सारे कामों के लिए चुना, किन इम्तिहानों में चुना। अगले रुकू के साथ इंशाल्लाह इसका खुलासा आपके सामने रखूंगी ताकि आप नोट कर सकें कि कैसे अल्लाह ताला अपने लोगों को चुनता है। और अभी आप समझे तो इस रुकू की तफसीर नहीं हुई, ये एक स्ट्रेच में हमने इसको इकट्ठा किया है कि किस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ बातों के दौर से गुजरे और उसके साथ उनका मामला दुरुस्त हुआ। कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल करें, तिलावत सुनेंगे।
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم